अब आज का जो हमारा पारा है, अब इसके मेन पॉइंट्स लिखिए। आप कहीं नहीं देखना, अपनी बुक्स को खोल लीजिए, खोलना चाहें, लेकिन इस वक्त आपकी नज़र लिखने पे होनी चाहिए। पारा नंबर 4 को हम देखेंगे आज इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ गुस्से की रोशनी में। मेन थीम है एंगर मैनेजमेंट। गुस्सा क्या होता है, इस पे तो बातें हम इंशाल्लाह कुछ कल करेंगे, लेकिन आज जो पारे के अंदर से आपको झलकियाँ मिलेंगी, चौथे पारे में क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपने मैंने गुस्से का मौजू देखना है, तो देख लीजिए कि तज़किया सीरीज़ में इस पारे को गुस्से की रोशनी में देखेंगे। याद रखिए, गुस्से से नहीं देखेंगे, गुस्से की रोशनी में देखेंगे। बहुत अहम मौजू है गुस्सा, और गुस्से पर कैसे काबू पाया जाए। इंग्लिश में इसको एंगर मैनेजमेंट कह लीजिए। इस मौजू की क्या हम सबको ज़रूरत है? पाकिस्तान में तो ज़रूरत ही कोई नहीं होगी ना, मुसलमान मुल्क है। मुझे यहाँ आकर पता चलता है कि गुस्सा कहते किसको है। हर बंदा गुस्से में, हर बंदा गुस्से में, गाड़ी में बैठा भी, मोटरसाइकिल पे बैठा भी, दुकानदार भी, काउंटर्स पे बैठे। बस जब आप अपने किसी पर्सनल काम से, कोई आईडी कार्ड बनवाना है, कोई पासपोर्ट रीन्यू कराना है, यकीन कीजिए आप किसी काउंटर पे चले जाएं। मेरा एक ऐसा पिछले साल तलख तजुर्बा था कि वो सिस्टर ऐसे बोल रही थी मुझसे कि मैं उनसे भीख ले रही हूँ। मेरे से पहले भी जिनसे थी, मैं उनको देख जू रही थी पीछे से, तो मेरी बारी आई तो मेरे से भी उन्होंने इसी टोन में बात की, पकड़ा इधर दें इधर। मैंने कहा, एक्सक्यूज़ मी सिस्टर, आर यू ओके? कहती मैं बीमार हूँ। तो मैंने कहा, आप यहीं छोड़ दीजिए। इतना सेंसिटिव काम कर रही थी ना वो, पासपोर्ट या आईडी कुछ इस तरह का इशू था, नंबर लिखने होते हैं। मैंने कहा, अगर आप बीमार हैं तो आप इधर क्यों बैठी हुई हैं? पब्लिक डीलिंग में आप बैठी हैं, आपको पता है वैस में ह्यूमन रिसोर्सेज HR, आप किसी को रिसेप्शन में नहीं बिठा सकते अगर HR का सर्टिफिकेट ना हो। ये छोटी छोटी कंपनियां जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, और मतलब कह लीजिए एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस वाले, ये अपने स्टाफ को पहले जाके पब्लिक डीलिंग सिखाते हैं। हम जैसे हों ताने मैंने दे दूँ कि आ जाएं घर बैठ जाएं। मैंने कहा, मैं नहीं आपको दूंगी, आप पे ज्यादती हो रही है, आपकी तबीयत ख़राब है, आप अपने बॉस से या आपका जो मैनेजर उसे क्या आपको छुट्टी दे। फिर वो मेरी बात सुनकर ज़रा सी ढीली हुई, रिलैक्स्ड हुई। ये टोन है हमारी, दीजिए करें करें जल्दी करें आगे करें। भाई क्या मतलब है, मेरी कोई इज्जत नहीं? मैंने तो कहा एक दो दफ़ा लास्ट ट्रिप में, दो तीन दफ़ा कहा कि यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कहीं बाहर चली जाऊँ, अव्वल तो मौका ही नहीं मिलता, कि मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। मैंने आपसे क्या कहा है, ना करें मेरा काम आप, लेकिन मेरे से सलीके से तो बोलें। तो याद रखिए, यहाँ तो ऐसा लगता है कि हर बंदा गुस्से में, उसकी वजूहत आज इंशाल्लाह कुछ आज कुछ कल रिकैप में हम देखेंगे। तो याद रखिए कि ज़िंदगी में हर लम्हे ऐसे अवामिल हमारे सामने आते हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। गुस्सा आएगा, मना भी नहीं है, गुस्से का ना आना भी ऐब है, उस तरह जैसे कि हर वक्त गुस्से का आना ऐब है। लेकिन कहाँ गुस्सा, ये आज हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे जाकर। तो जो असल चीज़ हम पढ़ेंगे वो क्या है, वल काज़िमीन अलगैज़। गुस्सा आए लेकिन आपने उसको काबू कैसे पाना है। जैसे एक शिकारी कुत्ता होता है ना, जो शख्स है उसका ट्रेनर, वो उसको शिकार पकड़ना सिखा देता है, तो वो कुत्ता उसके लिए रहमत है, उसके लिए शिकार पकड़ कर लाता है। लेकिन अगर बगैर ट्रेनिंग के उस कुत्ते को छोड़ दे तो वो कुत्ता हो सकता है उसको ही खा ले। इंग्लिश में कहते हैं कि गुस्सा एक शिकारी जानवर की तरह, आप अपने गुस्से को टेम कर लें तो गुस्सा आपकी ताकत है। खिलाफ़े शरीयत काम देखकर आपको गुस्सा आए, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन अगर आपका गुस्सा आपके ऊपर काबू पा गया तो वो आपको दबा करेगा। गुस्सा क्या है, कैसे है, इसको तो हम बाद में अलग से भी देखेंगे, लेकिन आइए ज़रा चंद चीज़ें नोट कीजिए। ये वक्त बहुत कीमती है आपके लिए। पारे की वो आयतें जिस पे गुस्से की तरफ आपको मुझे गाइडलाइन मिलती है, सबसे पहले देखिए ये पारा आयत 92 से शुरू होगा सूरत आले इमरान की। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून। पहली ही आयत में अल्लाह ताला ने हम सब को दावत दी कि आओ अपनी अना का सदका करो, मन पसंद चीज़ छोड़ो। इंसान को सबसे प्यारी मन ही होता है, यानी इंसान को सबसे प्यारा अपना आप होता है। तो फरमाया कि अपनी ज़ात तुम्हें प्यारी है। ज़िंदगी में कई बार जो गुस्सा आता है इसकी बड़ी वजह अपनी ज़ात होती है। तो जब हमारी ज़ात पर चोट पड़ती है तो हम गुस्सा करते हैं, तो अल्लाह ताला हमसे इस बात का मुतालबा करते हैं कि हम अपने आप को गुस्से से दूर रखें। फिर आगे लिखिए, और मैं जितने आयतों के नंबर बोल रही हूँ आप उसके साथ साथ एक एक लाइन छोड़ दीजिए। घर से आपने होमवर्क के तौर पर अपने नोट्स में आयत का वो टुकड़ा ही लिखें, पूरी आयत ना लिखिए कोई बात नहीं, लेकिन आप मतलब वो टुकड़े लिखिएगा, इससे इंशाल्लाह आपको अरबिक लिखने की आदत पड़ेगी। दूसरी आयत है आयत 93, कुल्लु तामिका नहिल्लल लिबनी इसराइल, और इसी के साथ आयत 98 में कुल याहलल किताब कहकर अल्लाह ने खिताब किया है किन से, अहले किताब का मुसलमानों पर गुस्सा, और इस गुस्से में किए गए दो एतराज़ात का जवाब है, जो इनको मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत को देखकर परेशानी हो रही थी, इसका तस्करा। फिर इसी तरह आयत 102 और 103 में अल्लाह ने उम्मते मुस्लिमा को अल्लाह के गज़ब और गुस्से से बचने की दावत दी है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और इसी तरह वा तसीमू बिहब्लिल्लाहि जमीया। क्या पता चला कि अगर उम्मते मुस्लिमा अल्लाह के गैज़ और गज़ब और गुस्से से बचना चाहती है तो उसको अल्लाह का तकवा इख्तियार करना पड़ेगा, आपस में मज़बूत होना पड़ेगा, फ़िरके वारियत को ख़त्म करना पड़ेगा, और शहादते हक का काम करना पड़ेगा, जिसका इशारा हमने दूसरे पारे की शुरुआत में देखा था। और कहा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम पर ऐसे हालात आ जाएंगे कि दुनिया में भी तुम अल्लाह के गज़ब की एक मुंह बोलती तस्वीर बन जाओगे, और कल क़यामत के दिन जो इंजाम होगा वो बड़ा ही भयानक होगा। इसके बाद आयत नंबर 112 में यहूद पर अल्लाह ताला के गुस्से का तस्करा है। अल्लाह ताला ने कहा दुरिबत अलैहिमु ज़िल्लतु अइनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लि मिनल्लाहि व हब्लि मिनन्नास। क्या पता चला पूरी कौमें अल्लाह के गज़ब का शिकार हो जाती हैं जब वो उसके हुक्मों पर अमल नहीं करती। इसके बाद हम देखेंगे आयत नंबर 116 116, इसमें कुफार को इस बात का यकीन दिलाया गया और एहसास दिलाया गया कि आज तुम मुसलमानों पर गुस्सा खाते हो जो माल और अपनी औलादें खर्च कर रहे हो, कल क़यामत के दिन तुम्हें गुस्सा आएगा कि हमने वो सब कुछ ज़ाया कर दिया, क्योंकि इन्नल्लज़ीन कफरू लन तुग़नी अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया। यानी वो माल और औलादें जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ तुम इस्तेमाल कर रहे हो कल वो भी तुम्हारे काम नहीं आएंगी। इसके बाद आयत नंबर 118, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतन मिन दूनिकुम, इसमें अल्लाह ताला ने अहले किताब के चेहरों पर मुसलमानों की तरक्की को देखकर जो गुस्सा और गज़ब आता है उसका तذکرہ आगे किया गया है कि देखो तुम तो इनसे मोहब्बत की बातें करते हो, लेकिन उनके दिलों की हालत क्या है कि तुम इनके चेहरों से गुस्सा देखो और गुस्से में अपनी उंगलियों को चटकते हैं। फिर इसके बाद आयत नंबर 119 है 119, कि जब ये अकेले होते हैं तो तुम्हारी तरक्की को देखकर गुस्से से उंगलियां चटकते हैं। व इज़ा खलवद्दु अलैकुमुल अनामिला मिनल गैद, इस गुस्से का इजहार है कि किस तरह लोगों को शौक़ से अल्लाह की तरफ आता देखकर ये गुस्सा खाते हैं। उसके बाद आयत नंबर 128 को नोट कीजिए, इसमें अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बददुआ की तरफ इशारा किया है, जो ग़ज़वे उहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद होने और भगदड़ मचने के बाद आपकी ज़ुबान मुबारक से निकल गई थी कि अब अल्लाह इनको हिदायत नहीं देगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इससे रोक दिया कि हिदायत देना लेना आपका नहीं मेरा काम है, लैस लक मिनल अम्री शैयुन औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून। फिर इसके बाद देखिए आयत नंबर 134 134, और इससे अगली कुछ आयतें वो आयतें हैं जिस पे इंशाल्लाह हम अभी डिटेल में बाद में बात कर सकेंगे कि गुस्सा और गुस्से के साथ हमारा मामला कैसा होना चाहिए, जिसमें अल्लाह ताला ने अल्लज़ीन युनफिकून फिस्सर्राय वद्दर्राय वल्काज़मीन अल्गैस वल्आफ़ीन अनिन नास का तस्करा किया है। इसके बाद मुसलमानों के लिए ये सबक है कि तुम गैरों के प्रोपेगंडे से मुतासिर हुए बग़ैर बेनियाज होकर अपने काम करते जाओ, तुम जितनी तरक्की करोगे तुम अल्लाह के रस्तों में जो कुछ भी करोगे इसका फ़ायदा तुम्हें होगा, और अगर तुम लोगों की बातों को दोहरा दोहरा कर अपने आप को भी गर्म करोगे और रिएक्शनरी हो जाओगे तो ख़ुद को भी नुकसान पहुंचाओगे और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाओगे। और उसके बाद आयत नंबर 140, और इससे आगे आप देखेंगे ग़ज़वे उहद से मुतल्लिक़ात है कि जिसमें मुसलमानों को एक बहुत ही बड़ी चोट पड़ी थी, रंज और गज़ब और गुस्से के मारे मुसलमानों के दिल दुखी थे, तो अल्लाह ने इसको ठंडा किया कि क्या हुआ अगर आज तुम्हें कोई तकलीफ़ या मुसीबत पहुंची है तो पिछले साल तुम भी तो इनको पहुंचा चुके हो ना। इन यमसस कुम कर हन फ़कद मसल कौम कर हम मिसलू, क्या पता चला कि ओहद में तो तुमने इनके 70 मारे और 70 को कैदी बना लिया, तो आज तुम्हारे तो सिर्फ 70 शहीद हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है तुम्हारे जो शहीद हुए उनका क्या नुकसान हुआ, वो जन्नतों में पहुंच गए। तो बुनियादी तौर पे यहाँ सिखाया गया कि जब कभी किसी नाकामी पे गुस्सा आए तो पिछली किसी कामयाबी को देख लीजिए, तो आपका गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाएगा। और इसके बाद फिर इस बारे में गज़वे उहद के तनाजुर में बहुत खूबसूरत बातें दिखाई गईं जिसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक गज़ब और गुस्से से ही है। और इसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, फ़बिमा रहमत मिन अल्लाह लिंत लहुम, एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप क्वालिटीज़ में एक जो बड़ी प्यारी बात थी वो क्या थी कि आप नरम थे। याद रखिएगा, अपने लिए भी ये बात नोट कीजिए कि आप एक लीडर हैं, आप एक उस्ताद हैं, माँ हैं, बाप हैं, मैनेजर हैं, प्रिंसिपल हैं, ग्रुप लीडर हैं, कुछ भी हैं, जहाँ अल्लाह ने आपको एक दर्जा ऊपर दिया है दूसरों के ऊपर, वहाँ लाजिम है कि आपको गुस्सा आएगा, दूसरे आपको गुस्सा दिलाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि आपके बच्चे और आपको गुस्सा ना दिलाएं, कभी हुआ ज़िंदगी में ऐसा? लेकिन आपने सब्र करना है, अल्लाह से ये कहना है कि अल्लाह मुझे सब्र करने वाला बना और मेरे इस गुस्से को मेरी ताकत बना, ना कि मेरी कमज़ोरी बना, बल्कि उस गुस्से की एनर्जी को यूज़ कीजिए और दीन को फैलाने और उसकी नशर इशात में आगे से आगे लेकर चले। और ख़ास तौर पे फिर आप देखिए कि शुरू में कह दिया कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बुन। बात यह है कि आप और मैं अपने आप को अगर इसमें रख कर देखें तो गुस्सा तो आएगा, लेकिन आइए ज़रा थोड़ा सा गुस्से को हम देख लेते हैं कि गुस्सा आखिर होता क्या है, किस तरीके से इसके ऊपर काबू पाने की ज़रूरत है। पहली बात है कि अरबी ज़ुबान में गुस्से के लिए बहुत सारे दर्जे हैं। बस आप देखिए, गैस, गज़ब, सुख्त, जैसे इंग्लिश में एंगर, फ्रस्ट्रेशन, अपसेटनेस। उर्दू में भी आप गुस्से के लिए बहुत से लफ्ज़ बोलते हैं, मसलन झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन, इंग्लिश में आप कहते हैं इरीटेशन, मिजाज का दरहम बरहम होना, ये सब गुस्से की फॉर्म्स हैं। आपके पास अगर एक बुक है ना, मुतरादिफातुल कुरान, मेरी फेवरेट बुक है, हर लफ्ज़ कुरान में जो मुख्तलिफ मानों में आए, जैसे दिल, दिल के लिए कल्ब भी है, नफ्स भी है, अफिदा भी है, इन सब का फ़र्क। मेरा बड़ी ख्वाहिश है कि कोई मुझे साहिब दिल लोग मिलें, चाहे 8-10 ही मिल जाए, मैं उनके साथ बैठ के वो बुक पढ़ा दूँ। यकीन कीजिए, इल्म की बहुत सारी तहें हैं जो अभी तक हमने खोली भी नहीं है। तो क्या पता चला कि गुस्से के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। ये गुस्सा कुव्वत गज़ब इंसान के अंदर मौजूद होती है। चंद चंद जुमलों में लिखे, ऐसे एक जुमला एक लाइन में लिखे, आगे छोड़ के दूसरी लाइन में जाएं, इस वक्त खुदा के लिए बुखल ना करें। बहुत सारे लोग एक बुखल करते हैं कापी बिछाने का, चुनमन 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 लिखेंगे, गंद मन डालते हैं खींचे मीचे, बाद में खुद भी नहीं पढ़ सकते हैं। तस्वीरुल जन्ना जब आप करते हैं तो हम पूरे नोट्स लेने का तरीका सिखाते हैं, यहाँ भी कहूँगी खुला खुला लिखें, बीच में दोबारा कल रिकैप होगा, बीच में उसी की बातें आती जाएंगी। तो एक एक जुमला एक लाइन में लिखिए चंद बातें गुस्से के बारे में। पहली बात है, गुस्से की कुव्वत हर बंदे के अंदर है, जैसे बिजली होती है ना, हमारे सब के अंदर पोटेशियम है, कैल्शियम है, गुस्से की कैफियत है, कुदरती तौर पे हर बंदे को गुस्सा आता है। लेकिन अगर आप और मैं अपने आप को खूबसूरत करना चाहते हैं, ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, पाक साफ और खूबसूरत बनाना चाहते हैं और सबसे बढ़ के जन्नत के शहरी बनना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कीजिए। किसी ने कहा कि उस शख्स की उस वक़्त तक तारीफ मत करो जब तक तुम उसे गुस्से की हालत में ना देख लो, क्योंकि गुस्से की हालत में इंसान अपने खौल में से बाहर आ जाता, असलियत खुल जाती है। जहाँ आप कई किरदारों की सूरत में देखिए, बाहर कितने अच्छे, और जब गुस्सा आता है तो ऐसे लगता है कि वो माँ बहन की गालियों पे आ जाते हैं। तो ये नामुमकिन है कि किसी शख्स को कभी गुस्सा ही ना आए। अल्लाह से बढ़कर हमें कौन जान सकता है, अला यालमु मन खलक। तो अल्लाह ने आपके अंदर मेरे गुस्सा रखा क्यों, पहली बात तो यही समझ लें, ताकि खिलाफ शरीयत चीज़ों को देखकर गुस्सा आए, हराम काम होते देखकर गुस्सा आए, शिर्क होते हुए देखकर गुस्सा आए। जैसे उमर फारूक को बात बात पे गुस्सा आता था, उमर की तलवार पे हाथ चले जाते थे जब वो किसी को इस्लाम की कोई बात तोड़ते हुए देखते थे। तो करना क्या है कि गुस्सा जब आए तो उसके इजहार में दीन की हदों को पामाल नहीं करना, सही मौके पर, सही मिकदार में, सही जगह और सही वजह से गुस्सा करें। मैं फिर बोलती हूँ, चार क्राइटेरियन लिखिए अपने लिए। सही मौके पे गुस्सा करना, सही मिकदार में करना, सही जगह पे और सही वजह से। मसलन गाली गलौच नहीं करनी, तोहमत नहीं लगानी, बहतान नहीं लगाना, गुस्से में गुनाहों का इर्तकाब नहीं करने लग जाना, गुस्से में आपे से बाहर नहीं होना, बेकाबू नहीं होना। कोई ऐसा काम ना करें कि मैंने क्या करूं, मैंने गुस्से में कर दिया। अगर इसको सुधार लेंगे तो ये गुस्सा आपको बहुत फायदा देगा, शिकारी कुत्ते की तरह। होता क्या है, ये कहाँ से पैदा होता है, ज़रा से इसका असल देखिए। किसी भी चीज़ की असल देख लेंगे ना तो बाकी चीज़ें खुद ही खुल जाएंगी। इंसान को कोई चीज़ नागवार गुजरती है, जब नागवार गुजरती है तो गुस्सा आता है। हम क्या करते हैं कि इस नागवारी की कैफियत को इतना बढ़ा लेते हैं कि बाज़ दफ़ा हम हर वक्त गुस्से में रहते हैं, बात बात पे तैशा रहे। याद रखिए कि गुस्से के वजूद को एक्नॉलेज किया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको लाइसेंस दे दिया कि आप हर वक्त गुस्से में रहें। गुस्से की बात अगर दीन के नाम पे हो, किसी के ऊपर जुल्म और ज्यादती देखते हुए हो, तो ये काबिले सताइश है, ये गुस्सा आपको फ़ायदा देगा। इसकी कुरान में कोई मिसाल याद है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कौम को बछड़े की पूजा करते देखा था तो क्या हुआ था? जी, सूरत अल अराफ में तो आयतें भी मौजूद हैं, सूरत बकरा में भी जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, ज़ोर से तख्तियाँ फेंकी, सारी तख्तियाँ टूट गई, तौरात जिन पे लिखी हुई थी। ठीक है, तो गुस्सा आता है। नबी सल्लम को भी गुस्सा आता था, आपका चेहरा बदल जाता था, आप यानी आपके माथे पे शिकने आ जाती थी, आपका रंग लाल हो जाता था, और सहाबा किराम को भी आता था, क्योंकि वो गुस्सा हक की खातिर होता था, दीन की गैरत की वजह से होता था। तो सारे दरवाजे बंद कर दीजिए गुस्से के, सिर्फ एक खुला रखे। गलत काम होता देख कर गुस्सा नहीं करना, ठीक है? मसलन दीन और अल्लाह की खातिर गुस्सा, ये कैसे होता है इसको समझिए। हज़रत अली का नाम आपने सुना होगा, किसी काफिर के साथ मुकाबले पे थे, पहले वो आप पे गालिब था, एकदम अल्लाह ने पांसा पलटा, ये आप उसके सीने पे चढ़ गए। जो ही हज़रत अली उसके सीने पे चढ़े तो उसने आपके मुंह पे थूक दिया। आप सोचिए ना, आपके मुंह पे कोई थूके तो आपको कितना बुरा लगेगा। बस वो थूक की देर थी, हज़रत अली ने उसको छोड़ दिया। वो शख्स बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा जब तक मैं आप पे गालिब नहीं था आप कोशिश कर रहे थे गलबा पाए, अब जब आप मेरे पे गालिब आ गए तो आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? कहा पहले मैं तेरे से लड़ रहा था अल्लाह के लिए, तू बातिल पे था, पर जब तूने मेरे मुंह पे थूका तो मुझे तुझ पे गुस्सा आ गया, तो मुझे लगा कि अब अगर मैं तुझे मारूंगा तो ये मैं अपनी ज़ात के दिफा के लिए मारूंगा, और मैं अपनी ज़ात के दिफा के लिए तुझसे नहीं लड़ रहा। अल्लाह के नबी की भी ये गवाही मौजूद है, आपकी अजवाज और आपके घर वालों की अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए कभी गुस्से में किसी से बदला नहीं लिया था। हाँ, दीन की हद टूटे तो गलत है। तो फिर पहली चीज़ हम समझ चुके हैं कि दीन के लिए गुस्सा आना बहुत पसंदीदा है, शर्त यह है कि उसके इजहार में आप रिएक्शनरी ना हो जाएं। हकीकत यह है कि अल्लाह सुबहाना तआला ने इंसान में जो गुस्सा रखा था वो इसलिए रखा था कि हम जहाँ भी कोई खिलाफ शरीयत काम होता देखें, किसी की हक तलफी होती देखें, तो उसको इस्तेमाल करें और फिर उसका कुछ ना कुछ इलाज करें। किसी शख्स को अगर बिल्कुल गुस्सा ना आए तो ये इसका ऐब है। ऐसा शख्स नाफरमानी देखकर भी बच्चियों में, बीवी में, घर वालों में खामोश रहे तो ऐसे शख्स को दयूस कहा गया। जैसे अगर आप मिसाल लेना चाहें तो अज़ीज़ मिस्र अपनी बीवी के अंदर खराबी देखकर भी चुप रहा तो ये उसका ऐब था, अच्छी बात नहीं थी। लेकिन गुस्से का इजहार अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक करना है इंशाल्लाह। गुस्से में आकर गैरत के नाम पे कानून को हाथ में ले लेना ये दुरुस्त चीज़ नहीं है। फिर इसी तरह याद रखिए कि शायरिल्लाह की बेहुर्मती होते हुए देख कर भी गुस्सा आना चाहिए। शायरिल्लाह क्या है? कुरान, मस्जिद, नबी सल्लम की ज़ात, खाना काबा, अल्लाह वाले नेक लोग, दीनदार, मुबल्लिगीन, आइमाए कराम, मुहद्दिसीन, सहाबे कराम, ये सब शायरिल्लाह। दाढ़ी, टोपी, निकाब, हिजाब, इन सब को इनकी बेहुर्मती करना या इनकी बेहुर्मती होते देखना और ठंडे होके बैठ जाना, ये बंदे का ऐब है। हज़रत मूसा की जो कैफियत अल्लाह ने पेश की है सूरत अल आराफ आयत 150 में, उससे पता चलता है कि गुस्सा ऐसे वक्त में पसंदीदा हो जाता है जहाँ गुस्से के इजहार से लोग वो गलत काम छोड़ दें। वलम्मा रजा मूसा इला कौम ही गदबान आसिफा, और मूसा अपनी कौम की तरफ इस हाल में लौटे कि वो इंतहाई गुस्से और अफसोस की हालत में थे। अल्लाह के नबी सल्लम को एक मौके पर गुस्सा आया था। कब? हज़रत माज ने कुछ तवील नमाज पढ़ा दी, लंबी नमाज पढ़ा दी, लोगों के लिए आजमाइश बन गई। लोगों ने आकर अल्लाह के नबी से शिकायत लगाई, तो आपने हज़रत माज को समझाया और फरमाया, या माजू, ए माज, क्या तुम लोगों को फितने में डाल रहे हो? यानी इतनी लंबी नमाज़ पढ़ा रहे हो कि लोग बेजार हो जाएंगे, फिर आपको इस पे गुस्सा आया। फिर इसी तरह आप सब ने वो वाक्या भी सुना हुआ है कि एक औरत ने चोरी की और हज़रत उसामा बिन जैद को सिफारशी बनाकर नबी सल्लम के पास भेजा गया। सुना हुआ वाक्या? लोगों का ख्याल था कि अल्लाह के नबी को चूँकि इनसे मोहब्बत बहुत है तो इनकी सिफारिश सुन लेंगे, लेकिन आपको उस पर गुस्सा आया और आपने फरमाया था कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उनके भी हाथ को कटवा देता। ये बुखारी की रिवायत है, आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, बीसियों बार पढ़ी और सुनी हुई है। हाँ, लेकिन अपनी ज़ात के लिए आपको कभी गुस्सा नहीं आया? 13 साल मक्का में क्या नहीं हुआ आपके ऊपर? काहिन मजनू दीवाना आपके ऊपर ओझड़ियाँ फेंकी गईं, आपका मजाक बनाया गया, दुख तो होता था। अल्लाह ताला कुरान पाक में कई जगह कहते हैं, ए नबी रंज ना खाइए, दुख ना कीजिए, लेकिन ये कभी नहीं कहते गुस्सा ना कीजिए, क्योंकि आपको गुस्सा नहीं आता था बल्कि आपको तकलीफ़ होती थी कि आप ऐसा ना करें। तो लिहाजा आपके मेरे लिए अभी तक गुस्से का जो एक मौजू पूरा हुआ, इस पे आपने मैंने अपने बारे में सोचना है। चलिए चंद सवाल लिखिए खुद से। अपने घर वालों में गलत काम देखकर मुझे गुस्सा आता है, मसलन नमाज का वक्त है और बच्चे सो रहे हैं, मेरी क्या कैफियत होती है? जुमे की नमाज का खुतबा करीब है कि शुरू हो और मर्द घर में हैं, मुझे गुस्सा आता है। मेरी बेटियां बेकार बेहुदा कपड़ों में बाहर निकलें तो क्या मुझे गुस्सा आता है? मेरे सामने किसी की बेइज्जती की जा रही है तो मुझे गुस्सा आता है। ये चंद सवाल और इससे मिलते हुए जवाब आप खुद बना लीजिए, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको कम से कम इससे एक फ़िक्र तो लग जाएगी ना कि कहीं मैं इतनी ठंडी तो नहीं हूँ कि बिल्कुल ही गुस्से और गुस्से वाली चीज़ों से अपने आप को अलग किए बैठी हूँ। और आज से इरादा कीजिए कि अगर खिलाफ़े शरीयत चीज़ों पे गुस्सा नहीं आता तो जाकर ईमान टेस्ट करवाऊँ। अंदर ईमान होगा तो गुस्सा आएगा, ठीक है, लेकिन दूसरी बात ये भी याद रखिए कि गुस्सा आ गया तो करें क्या? चीखना चिंगाड़ना शुरू कर दें? नहीं। ये इंशाल्लाह आपको बाद में इसके बारे में कुछ गाइडलाइन प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ दूंगी कि अगर खिलाफ़े शरीयत चीज़ों को भी देखा है तो गुस्सा आया तो सब गुस्से के बदले में करना क्या है। बस इतना याद रखिए कि किसी मौके पे भी अपनी शख्सियत को बदनुमा नहीं करना, दाग नहीं लगवाना। अल्लाह के नबी के लिए तो कुरान गवाही देता है सूरत कलम आयत 4 में, इन्नकल आला खुलुकिन अजीम, आप तो अखलाक के आला दर्जे पर मौजूद हैं। तो लिहाजा जब नबी सल्लम ने अपने गुस्से और उस पे सब पे काबू पा लिया तो आपने मैंने क्यों नहीं पाना। इंशाल्लाह जब हम अल्लाह से ही दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ही हमारी मदद भी करेगा इसमें, और ये कहा करें कि अल्लाह हमारे इस गुस्से को जन्नत हासिल करने का ज़रिया बना दे, इस गुस्से को हमारे आग में जलने का सबब ना बनाना। अल्लाह ना करे कि दुनिया में भी गुस्से की आग में जलते रहें और आखिरत में जहन्नुम की आग के सपुर्द कर दिए जाए। इसलिए अपनी दुआओं में ये दुआ शामिल करें कि अल्लाह मेरा गुस्सा तो अपने लिए कर ले और मुझे ऐसा बना ले कि मैं तुझे पसंद आ जाऊं, और जब कभी गुस्सा मुझे आए तो मुझे सुझा, मेरे दिल में इल्हाम कर कि अब इस मौके पे मैं क्या करूं। इतना प्रैक्टिकल ये टॉपिक है कि ये तो 6 दिन में भी ना ख़त्म हो, लेकिन इंशाल्लाह आपने आज से अगर नियत की है तो अब ये नहीं कि अब आज ही जाकर अब ठंडे ठार हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अपने लिए हदफ मुकर्रर करें। अगर आप गुस्से पे काबू पाना चाहते हैं तो 3 हदफ आप बना सकते हैं, 3 गोल बनाइए। कुछ फौरी तौर पे ख़त्म करनी, इंस्टेंटली, हैंड ब्रेक, आज नौ अभी, जिसको कहते हैं नौ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। कुछ चीज़ें आज ही ख़त्म कीजिए, फिर एक सेकंड लेवल पे अपने आप को टाइम दीजिए, कुछ आदतें अगले 3 माह के अंदर मैं बदल लूँगी इंशाल्लाह, 3 नहीं तो 5 लगा लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, ये तो सिर्फ सोच का अंदाज़ दिया जा रहा है। फिर इसी तरह कुछ चीज़ें जो आपकी और अंदर घड़ी हुई हैं, तबीयत का वो कहते हैं सेकंड नेचर बन चुकी है, आप उसको 6 माह दे दीजिए, 8 माह दे दीजिए, लेकिन रियलिस्टिक बेस पे हकीकत पसंदीदा गोल बनाए। इस पर मैंने पूरी वर्कशॉप करवाई थी, हमने एक कई दफ़ा ये मौजू किया है, पूरा पूरा दिन हम इस मौजू पे बात करते हैं, कभी मौका बना तो आपके साथ भी ये एक फुल डे सेमिनार रखा जा सकता है। पता चला घर वाले गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं और आप गुस्से के ऊपर काबू पाना सीख रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये नहीं हो सकता कि हमें एकदम बर्फ़ हो जाए, गुस्सा तो आएगा ना, आपको आज जाते ही बच्चों पे आए ना नौकरों पे आए, स्माइल स्माइल मुस्कुरा रहे, घर वालों ने आपको बाहर निकाल देना है, आप किसी और घर में आ गई हैं, आप तो वो हैं ही नहीं जो थी, तो ये भी गड़बड़ है। तो गैर हकीकी तवक्कुआत खुद से नहीं लगानी इंशाल्लाह।